थोड़े प्रयास से बड़े लाभ के लिए कानून। निम्नलिखित कानून आपको व्यक्तिगत स्तर पर और व्यावसायिक स्तर पर, वास्तव में किसी भी स्तर पर, जिसके बारे में आप सोच सकते हैं, किसी भी चीज से लाभ उत्पन्न करने की अनुमति देंगे। कानून वास्तव में विचार के ढांचे हैं और इस धारणा पर आधारित हैं कि तर्क और बुद्धि या ज्ञान दो अलग चीजें हैं। तर्क कहीं अधिक महत्वपूर्ण है और उसे प्राप्त करना भी आसान है। तर्क वास्तव में सोचने का एक तरीका है। वास्तव में बुद्धि और लाभ के बीच संबंध इतना मजबूत नहीं है। बहुत चतुर लोग हैं जो नहीं जानते कि पैसा या व्यक्तिगत लाभ कैसे कमाया जाए, क्योंकि वे यह नहीं समझते कि कमाने के लिए आपको सोचना होगा और लाभ पर ध्यान केंद्रित करना होगा। कानून इसी के लिए बनाए गए हैं। इन नियमों को वास्तव में परिभाषित किए बिना ही ये नियम वर्षों में मेरे लिए आकार लेते रहे, लेकिन अब आपके लाभ को अधिकतम करने के लिए उन्हें परिभाषित और आपके सामने प्रस्तुत किया गया है। यदि आपको या मुझे इससे लाभ होता है तो यह मेरा लाभ है। पहला कानून, लाभ का कानून। लाभ का कानून आपको इस पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करेगा कि क्या है महत्वपूर्ण। मैं कहना चाहूंगा कि लाभ का वित्तीय होना जरूरी नहीं है, बल्कि यह किसी भी क्षेत्र में हो सकता है जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। जब आप केंद्रित होते हैं, सफलता की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि सारा ध्यान लक्ष्य पर केंद्रित होता है। पहले चरण में ईमानदारी से यह समझना महत्वपूर्ण है कि आपके लिए क्या महत्वपूर्ण है, फिर सोचने पर ध्यान केंद्रित करें, क्या आपको आगे बढ़ाएगा लाभ। उस मामले के लिए समुदाय में स्वयंसेवा करने से भी लाभ उत्पन्न हो सकता है, इसलिए लाभदायक अर्थ में सोचना ठीक है। एक संपन्न समुदाय से मेरा लाभ क्या है और मैं ऐसा समुदाय कैसे बना सकता हूं जो मेरे और समुदाय के लिए ये लाभ उत्पन्न करेगा। स्टेरॉइड पर रुचि, क्या मैं जो कदम उठाऊंगा उससे मुझे लाभ होगा और इसमें जोखिम क्या है। यह वो सवाल है जो आपको हमेशा खुद से पूछना चाहिए। हाँ, इसका अर्थ है स्वार्थी होना। अत्यधिक रुचि, उदाहरण के लिए एक मित्र ने मुझसे पूछा कि क्या मुझे फ्लाइट अटेंडेंट या नर्स बनना सीखना चाहिए। नर्सिंग की पढ़ाई में 3 साल के लिए $1,00,000 का खर्च आएगा और एक पायलट के मुकाबले 2 गुना भुगतान किया जाएगा। पायलट अध्ययन सस्ता है और अधिक सम्मानजनक माना जाता है। मैंने उसे उत्तर दिया कि यह स्पष्ट रूप से पढ़ाई में थोड़ा और पैसा निवेश करने लायक है। नर्स बनना सीखने के लिए 3 साल, फिर बिना किसी जोखिम के 2 गुनी कमाई करने के लिए 40 साल। आप इस गणना के पीछे के तर्क को समझ सकते हैं। इस मामले में ट्यूशन फीस पर विचार करना अप्रासंगिक है, क्योंकि तब आर्थिक लाभ 2 गुना हो जाएगा। 30 साल के काम में उसका मुनाफा $1,000,000 से अधिक होगा। थोड़े से स्वतंत्र विचार ने उसका जीवन बदल दिया। स्वतंत्र विचार जीवन पर एक व्यवहारिक दृष्टिकोण है। यदि आपने कोई ऐसा निर्णय लिया है जिसमें कोई लाभ नहीं है, तो यह वास्तव में मुफ्त नहीं है। सोचा, मैं असफल नहीं हुआ, मैं असफल हुआ था। असफलता, अस्वीकृति या रास्ते में आने वाली बाधाओं का क्या करें? उनसे लाभ। ऐसे 2 लोगों को लें जिन्होंने समान विफलता का अनुभव किया है। एक अत्यधिक प्रेरित होगा बाधा को दूर करने के लिए, और दूसरा टूट जाएगा और हार मान लेगा। मेरा अनुमान है कि जनसंख्या का वितरण पहले प्रकार का 10% और दूसरे प्रकार का 90% है। इसका ज्ञान से कोई लेना देना नहीं है, बल्कि केवल इस बात से है कि कोई व्यक्ति ऐसी घटना से कैसे निपटता है। आंकड़े बताते हैं कि दुनिया के सबसे सफल लोग असफलताओं, अस्वीकृतियों और रास्ते में आने वाली अन्य कठिनाइयों से निर्माण करना और प्रेरित होना जानते हैं। आप उसे कैसे करते हैं? यहाँ 5 सिद्धांत दिए गए हैं जो आपको विफलता को लाभ में बदलने में मदद करेंगे। जोड़, असफलता एक अच्छी बात है। यह अनुभव को दर्शाता है। अवसरों की निरंतर खोज आपकी क्षमताओं में सुधार करती है और उन्हें प्रशिक्षित करती है, भले ही रास्ता विफलताओं और अस्वीकृतियों से भरा हो। अस्वीकृति, विफलता या अन्य कठिनाई भी आपके जीवन पथ में सकारात्मक हो सकती है, यदि आप जानते हैं कि प्रगति के लिए प्रेरणा उत्पन्न करने के लिए उनका उपयोग कैसे किया जाए। जोड़, हालांकि जब आपके सामने इस प्रकार की कोई घटना आती है, तो आपको ये जानना होगा कि कब एक पल के लिए पीछे हटना है, चीजों पर पुनर्विचार करना है और एक सूचित निर्णय लेना है, छोड़ देना और आगे बढ़ना या फिर से हमला करना। जोड़, यदि आपने दोबारा हमला करने का फैसला किया है, तो नई जानकारी के साथ या किसी स्रोत के संदर्भ के साथ घटना को छोड़ना महत्वपूर्ण है जो आपको विफलता की स्थिति से अनुभव से सीखने की स्थिति में ले जाएगा। जोड़, अंत में ये याद रखना महत्वपूर्ण है, यदि आप किसी चीज में असफल होते हैं, तो इसका आपके या आपके बारे में कोई मतलब नहीं है। आप असफल नहीं हैं। जोड़, जिया जियांग की पुस्तक रिजेक्शन प्रूफ पढ़ें। क्रोध, ईर्ष्या और बदले से लेकर लाभ तक, मैंने भावनाओं को कैसे शांत किया और इसे लाभ में कैसे बदला। 2000 के दशक की शुरुआत में हमने जिस बैकगैमॉन कंपनी की स्थापना की थी, उसमें मेरे और निवेशकों और सीईओ के बीच गंभीर मतभेद थे। हम एक मुद्दे पर पहुंचे ऐसी स्थिति जहां वे मेरी हर बात के खिलाफ थे या चाहते थे। समय के साथ उन्होंने मुझसे मेरे कुछ शेयर खरीद लिए, लेकिन एक दिन जब मैं एक निवेशक के साथ कार में जा रहा था तो उन्होंने मुझसे तिरस्कार पूर्वक कहा, यदि आप चाहें तो छोड़ो, तुम्हारे द्वारा छोड़े गए शेयरों के लिए हम तुम्हें $10,00,000 का भुगतान करेंगे। और उन्होंने कंपनी से मेरे अंतिम प्रस्थान के अवसर पर एक बड़ी पार्टी का आयोजन किया। बेशक इस अंतिम बिक्री लेनदेन में मैंने उन साझेदारों को भी शामिल किया जो मेरे प्रति वफादार थे, अलार्ड और गैल। कुछ साल बाद हमने साथ मिलकर +500 बनाया। मैंने निवेशकों के अहंकार से बदला लेने के गुस्से और इच्छा को +500 के निर्माण में लगाया। वैसे निवेशकों ने कुछ वर्षों के बाद कंपनी बंद कर दी। ये सिर्फ एक उदाहरण है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में मैंने लाभ के लिए विशिष्ट लोगों के प्रति क्रोध की भावनाओं को भी प्रदर्शित किया। मैंने इससे लाभ उठाए बिना बदला नहीं लिया। मैं ईर्ष्या की भावनाओं में प्रबल नहीं हूं, लेकिन कई लोग इसमें माहिर हैं। मैं आगे बढ़ने और लाभ पर ध्यान केंद्रित करने का सुझाव देता हूं, और आमतौर पर लाभ बिना किसी बदला, निगरानी या ईर्ष्या के आगे बढ़ने और जीतने में पाया जाता है। हार मान लेना या कभी नहीं जानना कि कब हार माननी है और कब कभी हार नहीं मानना एक महत्वपूर्ण बात है व्यवसाय, रिश्तों और जीवन में। सामान्य रूप से पोषण, खेल, दोस्ती और अन्य में सफलता के लिए संतुलन बनाने की क्षमता। हार मान लेना कुछ हद तक बेचने जैसा है। स्वामित्व के पूर्वाग्रह के कारण इसे बेचना हमारे लिए कठिन है। जब हमारे पास कोई वस्तु या विचार होता है तो हम उसे उसके वास्तविक मूल्य से अधिक मूल्य देते हैं, इसलिए हमारे लिए हार मानना कठिन है। हार मानने के साथ साथ यह विचार भी आते हैं कि क्या होगा अगर मैं और अधिक खो दूं, अगर मुझे कुछ बेहतर नहीं मिला, अगर मैं कोई गलत निर्णय ले लूं। कभी कभी संतुलन अंतर्ज्ञान से बाहर होगा और कभी कभी पेशेवरों और विपक्ष के ठंडे विचार से। दोष। यह विशेषता हमें अन्य वानरों से अलग करती है और संभवतः लगभग 6 मिलियन वर्ष पहले प्रकट हुई थी। लगभग 4 मिलियन वर्ष पहले ऑस्ट्रेलोपिथेसीन नामक एक समूह प्रकट हुआ था। वे छोटे थे, उनका दिमाग आधुनिक चिंपैंजी के समान आकार का था, लेकिन उनके दांत और जबड़े हमारे जैसे थे। लगभग 2.5 मिलियन वर्ष पहले हम होमो हैबिलिस द्वारा बनाए गए उपकरण के उपयोग का पहला प्रमाण देखते हैं, जिनके पास पहले से ही काफी बड़ा था मस्तिष्क ऑस्ट्रेलोपिथेसीन का। होमो इरेक्टस लगभग 1.9 मिलियन वर्ष पहले प्रकट हुआ था। वे अफ्रीका छोड़ने वाले पहले होमिनिन थे और आग में महारत हासिल करने में सक्षम थे। 500,000 साल पहले हम होमो हाइडेलबर्गेंसिस पाते हैं। इन प्रारंभिक मनुष्यों के पास बड़े दिमाग थे और वे जटिल सामाजिक समूहों में रहने वाले, अपने मृतकों को दफनाने वाले और बड़े जानवरों का शिकार करने वाले पहले व्यक्ति रहे होंगे। नियंडरथल लगभग 400,000 साल पहले होमो हाइडेलबर्गेंसिस से अलग हुए थे और यूरोप और एशिया में रहते थे। हमारी प्रजाति होमो सेपियंस लगभग 300,000 साल पहले अफ्रीका में दिखाई दिया था। हम भाषा का उपयोग करने, कलाकृतियां बनाने और उन्नत उपकरण विकसित करने वाले पहले व्यक्ति थे। लगभग 70,000 साल पहले हमने दुनिया भर में घूमना शुरू किया, अंततः अन्य सभी मानव प्रजातियों की जगह ले ली। अंततः लगभग 10,000 साल पहले होमो सेपियंस ने स्थायी बस्तियां बनाना और कृषि का विकास करना शुरू किया, जिससे मानव सभ्यता की शुरुआत हुई जैसा कि हम जानते हैं। कारखाना मनुष्य द्वारा निर्मित विकास सबसे अद्भुत तरीका है जो मैंने देखा है, और यदि आप कोई अन्य तरीका प्रस्तावित करते हैं तो आप शायद ऐसा भी करेंगे। उसने हमें और सभी वनस्पतियों और जीवों को बनाया, और नहीं, यह विश्वास का खंडन नहीं करता है। यदि आप आस्थावान लोग हैं तो संभवतः व्यक्ति निर्माण का यही तरीका है। यदि आप सुबारू के बारे में जानना चाहते हैं और आपको सुबारू कारखाने में जाने की पेशकश की जाती है तो आप इन कारों के बारे में सबसे अधिक सीखेंगे। मनुष्य होमो सेपियंस की तरह हमारे पास उस कारखाने को देखने की संभावना है जिसने पिछले 3.5 अरब वर्षों में पहली कोशिका से और 200 मिलियन वर्षों में पहले स्तनपाई से हमें पैदा किया। ये पौधा विकासात्मक है, इसलिए हमें अपने विचारों में विकास को बहुत महत्व देना चाहिए। यह अनंत लाभ उत्पन्न करता है, क्योंकि विकास प्रयोगशाला, नई दवा या सिर्फ एक अनुप्रयोग में किसी भी वैज्ञानिक या शोधकर्ता को मात देता है। वह आपको समझा सकती है कि अच्छा जीवन जीने के लिए आपको क्या खाना चाहिए, कैसे गाड़ी चलानी चाहिए, किससे जुड़ना चाहिए, कैसे पढ़ाई करनी चाहिए और क्या सपने देखना चाहिए। ये लाभ लोगों को आपको तथाकथित तथ्यों से धोखा देने से रोकेगा। जहां तक संभव हो, प्राचीन मानव जैसा व्यवहार प्रकृति में करते थे वैसा व्यवहार करने के लिए और यहां नकल करने और सुधार करने के लिए भी। उनकी नकल क्यों करें? कई मायनों में वे हमसे ज्यादा खुश और स्वस्थ थे। मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं है कि एक कार्यालय शिकार करने या प्रकृति में मौज मस्ती करने से बेहतर है। हमारा शरीर और दिमाग इस जीवन शैली के अनुकूल हो गया है। प्रौद्योगिकी, औषधियों, जादूगरों, मरहमों, चमत्कारी जड़ी बूटियों, ज्ञान और रसों से प्रकृति को मात देने की कोशिश में आमतौर पर असफलता ही मिलती है। वो कानून जो अच्छे जीवन की व्याख्या करता है, हार्वर्ड के शोध से पता चला है कि रिश्ते हमारे स्वास्थ्य पर सबसे प्रभावशाली कारक हैं, धूम्रपान से भी अधिक और पैसे से भी अधिक। ये जीवन की गुणवत्ता का नंबर एक भविष्यवक्ता है। 60,000 साल पहले जब एक होमो सेपियंस को एक धारा द्वारा अकेले भुला दिया गया था और पूरी जनजाति उससे बहुत दूर थी, विकास ने उसे तंत्रिका प्रतिक्रिया को सक्रिय करने और उसके शरीर में रासायनिक संकेत भेजने के लिए प्रेरित किया। इससे उसे जीवित रहने में मदद मिलेगी। वह तनावग्रस्त और उदास थी, शिकारियों के डर से रात में बहुत जागती थी और उस पर अपने कबीले में लौटने का दबाव था। ये संकेत एक या दो दिन के लिए अच्छे होते हैं, लेकिन जब आप लंबे समय तक जीवित रहने की समान भावनाओं का अनुभव करते हैं तो इसे आधुनिकीकरण का प्लेग कहा जाता है। हमें लंबे समय तक दबाव में नहीं रहना चाहिए, कारण हमने आज जिस तरह से जीने का तरीका बनाया है उसमें असंगति है। इसका लक्षण है अकेलापन और उदासी। ध्यान दें कि आदिम मनुष्य के नियम ने हमारे शरीर पर निरंतर तनाव के प्रभाव के जैविक तंत्र में जाए बिना इसका कारण हल कर दिया, लेकिन हार्वर्ड के शोध और थोड़े से मानव विज्ञान की मदद से हम भारी लाभ के लिए एक महत्वपूर्ण निष्कर्ष पर पहुंचे। ये हमारे जीवन की गुणवत्ता के लिए भारी लाभ के लिए रिश्तों को बनाए रखने और विकसित करने के लायक है। जब हमारे आसपास लोग होते हैं तो दुखी होना बहुत मुश्किल होता है। स्थान के नियम में रिश्तों को बनाए रखने और पोषित करने का एक उत्कृष्ट तरीका है। प्रकृति को किसने डिजाइन किया? जिसने भी प्रकृति को डिजाइन किया वह मनुष्यों को ऐसा करने का अवसर नहीं देना चाहता था इसे पार करें। जब आप कोई स्वास्थ्य समस्या देखते हैं और आश्चर्य करते हैं कि क्या यह जीन या पर्यावरण है, तो सबसे अधिक संभावना यह है कि यह पर्यावरण यानी भोजन है। हमारा व्यवहार या जीवन शैली इस बात से मेल नहीं खाती कि हम कैसे बने हैं। इस कानून से हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि हम खाने के लिए उपयुक्त हैं, मांस, मछली, खट्टी रोटी, खट्टी बकरी के दूध के उत्पाद और पके फल। निःशुल्क पोषण में इस पर और अधिक जानकारी। इस नियम से आप समझ सकते हैं कि हमें कैसे चलना, बैठना, दौड़ना, भार उठाना और सोना चाहिए जैसा कि विकास चाहता था। आप इसके बारे में मेरी रोजमर्रा की जिंदगी में पढ़ेंगे। ये कानून स्वतंत्र विचार के साथ शरीर और मन के मुद्दे को हल करता है, कुछ ऐसा जो आपको दवाओं और सर्जरी जैसे गैर विकासवादी तरीकों की तुलना में लगभग असीमित लाभ देगा। क्या ये जीन या पर्यावरण है? जब का सवाल है चाहे वो जीन हो या पर्यावरण, ये शर्त लगाना बेहतर होगा कि यह पर्यावरण ही है जो हमारे कार्य करने के तरीके के लिए जिम्मेदार है, न कि जीन। प्रकृति और शारीरिक विशेषताओं जैसे ऊंचाई, चेहरे का आकार में यह अक्सर जीन होता है, लेकिन अन्य चीजों में ये पर्यावरण और हमारा जीवन पथ होता है। मूल बात, सब कुछ हमारे ऊपर था। यदि दौड़ते समय आपके टखने में दर्द होता है तो अपने जीन को दोष न दें, ये बस कुछ ऐसा है जो आप गलत कर रहे हैं। दबाना विकासवादी है। प्राचीन समय में उन्होंने आघात और अप्रिय घटनाओं को दबा दिया था और नए मनोविज्ञान में आज की तरह उन पर गहराई से ध्यान नहीं दिया। डोट, विकासवादी दृष्टिकोण से ये तर्कसंगत लगता है कि हम आगे बढ़ने के लिए बनाए गए हैं, न कि अतीत पर ध्यान केंद्रित करते रहने और खुद के लिए खेद महसूस करने के लिए। क्या अतीत के बारे में बात करना और कठिन घटनाओं को याद करना एक सामाजिक कंडीशनिंग है या वास्तव में क्या करने लायक है? ये तर्कसंगत लगता है कि अतीत को दबाना और उसमें कुरेदना नहीं बल्कि उससे सीखना ही बेहतर है। हमारे पास एक प्राकृतिक तंत्र है जो हमें अतीत को भूलकर आगे बढ़ने की अनुमति देता है। महिलाओं में ये प्रसव के दौरान अच्छा काम करता है। फुटबॉल खिलाड़ी और प्राचीन मनुष्य। क्या फुटबॉल हमारे खेलने के लिए एक अच्छा खेल है? यदि आप मनुष्य के विकास के बारे में सोचें तो उत्तर पाना आसान है। हमें कई वर्षों से हर दिन कई झटके और गिरने का सामना नहीं करना पड़ा है, इसलिए हमें इसे संभालने के लिए प्रशिक्षित नहीं किया गया है। वास्तव में हम देखते हैं कि फुटबॉल खिलाड़ियों में सामान्य आबादी की तुलना में अल्जाइमर, पार्किंसंस और सीटीई जैसी सिर की बीमारियों की घटनाएं बहुत अधिक होती हैं। सच तो ये है कि जब मैं सॉकर बॉल को हिट करता हूं तो मुझे कुछ सेकंड के लिए चक्कर आ जाता है। हम शायद अपने सिर को शॉक अवशोषक के रूप में उपयोग करने के लिए नहीं बने हैं। 24 सेकंड का नियम, कानून 3-24 सेकंड जोजे प्लस 500 के बीच हमारे पास एक नियम था दोस्तों, हमने इसे 24 सेकंड का नियम कहा। विचार ये था कि जो काम अभी 24 सेकंड में किया जा सकता है उसे अभी करते हुए। यह एक महत्वपूर्ण बातचीत या निर्णय हो सकता है, या एक महत्वपूर्ण कर्मचारी भर्ती हो सकती है जिसे बंद करने की आवश्यकता है। जो कुछ भी अभी किया जा सकता है उसे टाले नहीं। जब मैं सीईओ था और लोग मेरे पास आते थे और पूछते थे, मैं आपसे कब बात कर सकता हूं? जवाब लगभग हमेशा होता था, मैं 24 सेकंड का नियम लागू कर रहा हूं, बात करें। बेशक कभी कभी इसका अनुमान 24 मिनट या 24 घंटे के लिए लगाना पड़ता था, और भगवान न करे कि हमने इसे 24 दिन का नहीं बनाया। और हाँ, मैं जन्म से ही अधीर था। यहाँ तक कि अपने निजी जीवन में भी मैंने अपनी माँ से कुछ सीखा। छोटी या बड़ी चीजें जो अभी की जा सकती हैं, मैं बस उन्हें करता हूँ और उन्हें टालता नहीं हूँ। कार्यों को खत्म करने में इसका बहुत बड़ा फायदा होता है, क्योंकि जो काम हम शुरू करते हैं उनमें उन्हें खत्म करने की प्रवृत्ति बहुत अधिक होती है। और हाँ, मुझे काम छोड़ना या बीच में कुछ छोड़ना पसंद नहीं है। कभी कभी लोगों से बात करते समय वे सभी प्रकार की बातें कहते हैं, और फिर मैं बात करते समय इसे पूरा करता हूँ। मुझे लगता है कि यह जीवन में सबसे महत्वपूर्ण नियमों में से एक है। हम अपने बच्चों को इस तरह से शिक्षित करते हैं। यह आसान नहीं है, क्योंकि हमारी प्रवृत्ति है कार्यों को स्थगित करें, लेकिन जब आप चीजों की उपेक्षा नहीं करते हैं तो चीजें पूरी हो जाती हैं और प्रगति होती है। मैं सचमुच बहुत से सफल लोगों से मिलता हूँ जो अनजाने में हर समय 24 सेकंड नियम का पालन करते हैं। यदि आप अभी कर सकते हैं तो कल क्यों बात करें। मुझे एक कॉल आती है और बातचीत में एक नाटकीय आवाज आती है जो कहती है, संबंधित +500 पर मेरा काम, मैं आपके साथ बातचीत शेड्यूल करना चाहता था। मेरा जवाब, निश्चित रूप से, मेरे शब्द एक उपकरण है जिसके साथ मैं अपने व्यक्तिगत जीवन में भी काम करता हूँ। एक छोटी या बड़ी चीज जिसे अब बंद किया जा सकता है, मैं इसे अभी बंद कर दूंगा या शुरू कर दूंगा, बिल्कुल इस अनुभाग की तरह जो मुझे याद आया कि मुझे इसे जोड़ना चाहिए। 24 सेकंड का कानून काम करता है। एक मित्र ने जब ये खंड पढ़ा तो उसने मुझे लिखा, जब मैं +500 में आपसे मिलने आया था तो कुछ छोटी सी चीज थी जिसे करने की जरूरत थी और आपने इसे स्वयं ही कर दिया, और मैंने पूछा कि इसे किसी और को क्यों नहीं सौंप दिया जाए अन्य, और आपने 24 का नियम कहा, क्या आप इसे जानते हैं। मुझे कार्य को स्वयं करने की तुलना में समझाने में अधिक समय लगेगा। ये वास्तव में मेरे मन को छू गया और उसके बाद मैंने इसका बहुत प्रयोग किया, शायद सैकड़ों बार। संक्षेप में एक महान कानून, 24 सेकंड में बिना स्नान सूट के पानी में कूदें। हाँ, यहाँ भी मैं बहुत अधिक प्रयास किए बिना लाभ की तलाश में हूँ। जैसे हम एक ट्रैक पर हैं, हम सब कुछ जानना चाहते हैं वो समय जब हम सही दिशा में होते हैं। ठीक इसी तरह से सही दिशा में 24 सेकंड का मामला काम आता है। जिन चीजों की जांच करने में कभी कभी कुछ महीने लग जाते हैं, आप प्रक्रिया को छोटा कर सकते हैं और बस इसे जांच सकते हैं जैसे कि आपके पास है सब कुछ, सिर्फ इस बात का त्वरित उत्तर पाने के लिए कि आप सही रास्ते पर हैं या नहीं। ये थोड़े से प्रयास से एक बड़ा लाभ है, क्योंकि आप अधिक निवेश किए बिना दिशा की जांच करते हैं। मैंने इसे अपने पूरे जीवन में किया है, ये जल्दी से दिशा प्राप्त करने के लिए है। मान लीजिए कि आप वकील बनना चाहते हैं, बस संकाय में एक व्याख्यान में जाएं और देखें कि क्या यह आप पर बिल्कुल सूट करता है। क्या आप एक चमत्कारी गेंद बेचना चाहते हैं? एक साइट ऐसे चुनें जैसे कि आपके पास गेंद हो और देखें कि क्या उसमें रुचि है। आप जूते बेचने और खरीदने की तेजी को जांचना चाहते हैं, उसके लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप खोलें और महसूस करें कि क्या कोई मांग है। ग्राहकों से बात करें। +500 में हम ये परीक्षण करना चाहते थे कि वास्तव में एक बेवकूफी भरा ट्रेडिंग सिस्टम काम करेगा या नहीं, इसलिए इसे विकसित करने के बजाय हमने बस एक वेबसाइट स्थापित की जिसने ऐसा दिखावा किया जैसे कि यह हमारे पास पहले से ही है। वास्तव में हमारे पास केवल एक वेबसाइट थी और हम ये देखना चाहते थे कि लोग कैसे प्रतिक्रिया देंगे। आखिरकार वे नहीं जानते कि वास्तव में कोई प्रणाली नहीं है। यह एक गंभीर विफलता थी। विकास में कुछ महीने खर्च करने के बजाय यह विकास के कुछ घंटे थे, और हमें दिशा में उत्तर मिला। उत्तर था कूड़ेदान में। मैंने अपने बच्चों को मोशाव में केला केले बेचने का सुझाव दिया। उन्होंने पहाड़ों और पहाड़ियों की योजना बनाना शुरू कर दिया। यह शायद मानव स्वभाव है। मैंने उनसे कहा, घर पर केला केले गर्म करें, एक छोटा सा रखें। दक्षिण अमेरिका से एक चमत्कारी केला अब NIS 15 लिखा हुआ है और आप देखेंगे कि इसमें किसी की दिलचस्पी है। इसलिए मुझे आशा है कि आप एक नक्शा ले जाएंगे जो आपको हमेशा अपने पास रखना चाहिए यदि आप जा रहे हैं, भले ही आपको ऐसा करना पड़े। थोड़ा धोखा दो, इससे किसी को चोट नहीं लगती। मगरमच्छ 24 दिनों तक इंतजार करता है। धैर्य ही खेल का नाम है। शिकार आने तक इंतजार करो और फिर उस पर झपट्टा मारो। कभी कभी वो हफ्तों तक इंतजार करता है जब तक कि शिकार ना आ जाए, लेकिन जब शिकार आता है तो वो उस पर झपट्टा है। अच्छी चीजें कभी कभार ही आती हैं, इसलिए आपको धैर्य रखना होगा, बहुत धैर्य रखना होगा। साल में कुछ बार या वर्षों में भी निवेश के अच्छे अवसर होते हैं। आपको औसत दर्जे की चीजों को फिल्टर करना सीखना होगा, हर समय प्राप्त करें। एक अच्छा उदाहरण निवेश में है। साल में कुछ बार या वर्षों में पूंजी बाजार में निवेश के अच्छे अवसर होते हैं। किसी विचार को लागू करने का एक और उदाहरण, जब तक आप आश्वस्त ना हो जाएं तब तक इंतजार करना बेहतर है और फिर इसे लागू करें और पहले विचार पर ना जाएं। गतिविधि चुनते समय दीर्घकालिक के बारे में सोचना बेहतर होता है। लंबी अवधि के आलस्य के बीच सही रास्ता चुनते हुए आपको आलस्य का विरोध करना चाहिए और लंबी अवधि के लिए चलना चाहिए। उदाहरण के लिए, रसीद वाले स्मार्ट लोगों द्वारा लिखी गई सैद्धांतिक किताबें पढ़ना अपने खाली समय में लंबी अवधि के बारे में सोचना है। 24 सेकंड के कानून के लिए आपके दिमाग में एक अच्छा फ्रेम, यहां आप पढ़ सकते हैं कि एक फ्रेम क्या है। जब मैंने फ्रेम किया, कानून मेरे लिए एक विचार के रूप में है। मैं उन चीजों की कल्पना करता हूं जो डरावनी और कठिन है, जो हमेशा करने में नहीं आती हैं। भागने और उन्हें अस्वीकार करने के बजाय मैं उन पर हमला करता हूं। जब आप किसी व्यवसाय या इंजीनियरिंग समस्या या कार्य के संपर्क में आने का प्रयास करते हैं तो आप पहला कदम उठाते हैं। कभी कभी यह इतना कठिन होता है कि आपको प्रारंभिक जानकारी प्राप्त होती है। आप समस्या को, अपने आसपास के लोगों को और विशेष रूप से स्वयं को दिखाते हैं कि आप डरते नहीं हैं और मामले को सुलझा सकते हैं, और संपर्क की खोज में यह महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो एक प्रकार का 24 सेकंड का कानून है। यह एक मैं आया हूं और जब तक इसका समाधान नहीं हो जाता तब तक मैं इससे गुजरता रहूंगा कथन है। यहां तक कि जब कोई आपसे कुछ मांगता है तो उनके सामने संपर्क पर पूरा लिखकर हस्ताक्षर करें। बूम, वही है जो मैं चाहता हूं। मेरे साथ बातचीत में कई बार लोग सीधेपन से आश्चर्यचकित हो जाते हैं। उदाहरण के लिए, मैं अपने विज्ञापन के साथ एक वर्ष के लिए साइट के शीर्ष पर दिखना चाहता हूं। हम आपको बहुत अधिक बातचीत या चापलूसी के बिना, बहुत अधिक समय बर्बाद किए बिना इस संपर्क के लिए प्रयास करते हुए एक्स का भुगतान करेंगे। कभी कभी पहुंचने के लिए परिष्कार की भी आवश्यकता होती है। एक निश्चित सीईओ के पास एक ईमेल है जिसका शीर्षक है, इस बार 15वीं बार मैं आपसे मिलने की कोशिश कर रहा हूं। भले ही यह पहली बार था, मैं संपर्क के लिए पहुंचना चाहता था। कठिनाई अपमान करने की नहीं है और यह समझने की है कि आपके सामने कौन खड़ा है, अहंकारी या विनम्र, उनकी रुचि क्या है। आप बुलडोजर हैं, एलन मस्क टेस्ला विनिर्माण संयंत्र में सिर्फ फर्श पर नहीं सोते थे। वह अच्छी तरह से जानते थे कि यह हर किसी को उनकी तरह निवेश करने के लिए प्रेरित करेगा। वह बुलडोजर हैं। मैंने कॉरिडोर से पहले साल प्लस 500 में काम किया। मुझे यह सही लगा कि हर कोई मेरे पास आएगा और मुझे देखेगा। लाभ कमाने के लिए और चाहे कोई भी क्षेत्र हो, हमें प्रगति महसूस करने की जरूरत है। यदि आप कैलकुलस परीक्षण के लिए अध्ययन कर रहे हैं तो आपके द्वारा किए गए प्रत्येक प्रश्न में आपको प्रगति महसूस होनी चाहिए। जैसे एक बुलडोजर धीरे धीरे चल रहा है, लगातार प्रगति महसूस होनी चाहिए। यदि कोई प्रगति नहीं हो रही है तो आप समझेंगे कि प्रगति में क्या बाधा आ रही है। जब आप कोई प्रोजेक्ट कर रहे हैं और कोई चीज आगे नहीं बढ़ रही है तो आप प्रतिक्रिया करेंगे और समझेंगे कि वहां क्या काम नहीं कर रहा है। समय चीजों को आगे नहीं बढ़ाता, केवल आपको आगे बढ़ाता है। जब हमने शतरंज के खेल का सॉफ्टवेयर बनाया तो मैं हर दिन वेबसाइट, सर्वर और कंपनी से जुड़ी हर चीज की प्रगति देखना चाहता था। जब कोई प्रगति नहीं हुई तो मैं गया और देखा कि कौन सी चीज मुझे रोक रही थी। संक्षेप में, आप बुलडोजर हैं और केवल आप हैं। परीक्षण के लिए रोइंग और हत्या का प्रमाणन। जब मैं हाई स्कूल में था तो मैंने एक दिलचस्प घटना देखी। जब मैंने अपने द्वारा दिए गए परीक्षण की जांच की तो मुझे हमेशा गलतियां मिली। जब सभी लोग परीक्षा समाप्त करने के बाद चले गए तो मैंने कुछ और मिनट बिताए और सभी उत्तरों की जांच की। यह निश्चित रूप से बड़े लाभ के लिए एक छोटा सा प्रयास है। गणित और भौतिकी में यह अपेक्षाकृत आसान है, क्योंकि आप जांचते हैं कि परिणाम सूत्रों से मेल खाता है या नहीं। मैं अपनी बात स्पष्ट करने के लिए सैन्य वाक्यांश, किल सर्टिफिकेट का उपयोग करना पसंद करता हूं। मान लीजिए कि परीक्षा 1.5 घंटे की थी, मैंने उत्तर जांचने में 10 मिनट और लगाए और इससे आमतौर पर मेरा ग्रेड 10% बढ़ गया और इसमें लगने वाला समय नगण्य था। 20 साल आगे मेरे साथ आइए, प्लस 500 में और जिस भी कंपनी में मैं शामिल था, मैंने हमेशा सब कुछ जांचा। मान लीजिए कि उन्होंने मुझसे कहा, हमने ईमेल को बैंगनी रंग में रखने की व्यवस्था की है। मैं जाऊंगा और खुद को सॉफ्टवेयर से एक ईमेल भेजूंगा और जांच करूंगा कि यह बैंगनी है या नहीं। वैसे अधिकांश समय यह बैंगनी नहीं था, क्योंकि उफ, वे हतमेल में अल्पविराम भूल गए थे। जब मैं लगातार जांच कर रहा था तो इससे प्रगति में अत्यधिक सुधार हुआ, क्योंकि मेरे आसपास के अन्य लोग भी लगातार जांच कर रहे थे। हम ऐसे प्राणी हैं जो मानदंडों के साथ जुड़ना पसंद करते हैं, और यदि मानदंड लगातार जांच करना है कि कोई समस्या नहीं है तो हर कोई ऐसा करता है। रास्ता और बहुत बड़ा मुनाफा होता है। वास्तव में जब हर कोई लगातार जांच कर रहा होता है तो एक आदर्श उत्पाद होता है। मैं इस परीक्षण, मृत्यु प्रमाण पत्र को जीवन के सभी क्षेत्रों में लागू करता हूं, और अधिकांश बार मुझे लगता है कि दोबारा जांच करने के लिए समय बर्बाद करना उचित है। इसलिए अगली बार जब आपको बताया जाए कि उन्होंने वही किया जो आपने कहा था, तो जांच लें। फिर ये भी हो सकता है कि उन्हें निरीक्षण और मृत्यु प्रमाण पत्र के कानून की जानकारी नहीं हो। गधे का कानून, कानून 4, हमारी राय लचीली होनी चाहिए। कई बार कोई मुझसे बात करना शुरू कर देता है और फिर मैं मन ही मन कुछ इस तरह बड़बड़ाता हूँ, क्या बकवास है, ये सच नहीं है, ये बकवास है, संदेह करना सही और स्वस्थ है, लेकिन मैं अक्सर खुद से कहता हूँ, एक मिनट दीजिए, आपको समझाने का एक मौका दीजिए, आप जो सोच रहे हैं उसे एक पल के लिए रिसेट करें, शायद ये सच है। 10 में से 1 मामले में यह मेरे पास जाता है और मैं आश्वस्त हूँ। खुद की जांच करते हुए, यह एक बड़ा लाभ है जिसे मैं खो देता अगर मैं सिर्फ गधा होता। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ जब मैंने सब्जियां आपको मारने की कोशिश क्यों करती हैं के बारे में एक व्याख्यान सुना। मैंने शोध किया और देखा कि यह सच था। मैं पागल हो गया, मुझे और सब्जियां खाने की जरूरत नहीं है। केवल एक गधा ऐसा नहीं करता, उसकी राय बदलो। गधा कानून के बिना स्वतंत्र रूप से सोचना असंभव है। दिन में कम से कम एक बार चीजों पर अपनी राय बदलने की कोशिश करें। जब वे मुझसे कहते हैं, ठीक है, मैंने आपकी राय बदल दी, वह क्या है? मेरा जवाब हमेशा होता था, मैं गंभीर नहीं हूं, मुझे अतिरिक्त डेटा प्राप्त हुआ और मैंने अपनी राय बदल दी, आप उन्हें ठीक कर सकते हैं। हम लगातार सीख रहे हैं। गधा कानून को सक्रिय करें और अपना मन बदलें कि आप लोगों के बारे में क्या सोचते हैं, उन झगड़ों के बारे में जो आपकी गलती थी और आपने जिम्मेदारी दूसरे पर छोड़ दी थी। कानून कहता है कि घटना की जिम्मेदारी लें और अपना मन बदल लें क्योंकि आप गंभीर नहीं हैं। दूसरों के लिए गंभीर का कानून कम महत्वपूर्ण नहीं है, दूसरों के लिए अपना मन बदलना भी बहुत मुश्किल है, इसलिए अगर कोई बात है तो हर कोई में पैदा हुआ था और इसकी सच्चाई के प्रति आश्वस्त हैं, इसे बदलना बहुत मुश्किल होगा। गधे के कानून को आत्मसात करने और लागू करने में समय लगता है, क्योंकि हमारे लिए गलती को स्वीकार करना मुश्किल होता है और शायद हम बेवकूफी महसूस करते हैं, लेकिन ये प्रयास करने लायक है और हो सकता है कि आप के कानून को समझाने में सक्षम हों अन्य लोगों के लिए। गधा मैमोनाइड्स आइंस्टीन या कोई अन्य हार्ड मास का व्यक्ति है। मैं खुद पर विश्वास करता हूं और बाकी पर संदेह करता हूं और मैं गंभीर नहीं हूं। मनुष्य स्वतंत्रता से प्यार करते हैं और स्वतंत्रता में पनपते हैं, और फिर भी हम मानसिक स्वतंत्रता के लिए समय देना भूल जाते हैं क्योंकि यह बहुत छिपी हुई है। इसलिए किसी निश्चित मुद्दे पर संपर्क करते समय शून्य गलत या निराधार धारणाओं से शुरू करें। जटिल समस्याओं को हल करने का यही एकमात्र तरीका है, बस स्वतंत्र विचार से। जब आपसे कुछ कहा जाता है तो सोचें कि क्या इसका विपरीत भी सच है। तथ्य यह है कि हर कोई कुछ करता है, इसका मतलब यह नहीं है कि यह सच है। इसका सीधा सा मतलब है कि हर कोई ऐसा कर रहा है। आंशिक रूप से सत्य और आंशिक रूप से अहरामबाम यहूदी लोगों के लिए उभरे महान लोगों में से एक स्वतंत्र विचारक थे। उनके पास एक निडर दिमाग है और उन्होंने अनगिनत चीजों पर अपनी राय देने के लिए विज्ञान के साथ साथ तर्क का भी इस्तेमाल किया। लेकिन ध्यान दें, ये केवल एक बहुत बुद्धिमान यहूदी की राय है, ये सिनेटिक टोरा नहीं है और हमें स्वतंत्र और स्वतंत्र सोच वाले लोगों के रूप में बांधते नहीं है। मुझे आशा है कि आप भी यहां जो कुछ मैं लिखता हूं उस पर सवाल उठाएंगे और उन्हें केवल मेरी राय के रूप में देखेंगे। रामबाम ने लिखा, लेकिन यह उस महिला के लिए अपमान है जो हमेशा बाहर जाती है, कभी बाहर और कभी सड़कों पर, और पति को अपनी पत्नी को ऐसा करने से रोकना चाहिए और उसे महीने में 1 या 2 बार के अलावा बाहर जाने की अनुमति नहीं देनी चाहिए, आवश्यकतानुसार महीना। निःसंदेह यह उनकी राय है और मेरे लिए यह राय स्पष्ट रूप से गलत और अनैतिक है। रामबाम वैज्ञानिक दुनिया और आध्यात्मिक दुनिया के बीच अच्छी तरह से अंतर करना जानते थे, जब उन्होंने उन्हें उत्पत्ति का कार्य और मर्कबा का कार्य कहा। यह अलगाव अद्भुत है और वास्तव में जो राय नहीं है उसे राय से अलग करता है। ऐसा कोई इंसान नहीं है जो केवल सच्ची बातें कहता हो। आमतौर पर जब मैं कोई किताब पढ़ता हूं तो सबसे अच्छे से 10% विचार लेता हूं और सबसे खराब 1%। यही हाल उन लोगों का भी है जिनसे मैं बात करता हूं। ज्यादातर बातें सच नहीं होती या विकृत होती हैं। इसलिए किसी व्यक्ति को इसलिए अयोग्य न ठहराएं क्योंकि आपने कुछ झूठी बातें सुनी हैं। वहीं दूसरी ओर किसी की कही हर बात को ठोस सच न माने। हर बात के सच होने या न होने के बारे में गंभीर न हो। आमतौर पर छोटे छोटे हिस्से ही सच होते हैं। प्रत्येक मुद्दे का उसके गुणों के आधार पर मूल्यांकन किया जाना चाहिए। लेकिन हाँ, हमारे सामने जो व्यक्ति है उसे महत्व दें। किसी ने मुझसे कहा था कि चेत गिफ्टी बहुत गलत है, ये सच है, लेकिन वो जो उत्तर देता है उसमें वो मूल व्यक्ति से अधिक सही है। प्रत्येक उत्तर को स्वतंत्र विचार के उपकरणों के साथ अलग से आंका जाना चाहिए। गंभीर कानून से लाभ उठाने के लिए राय को तथ्य से अलग न करें। स्वयं सोचें कि क्या सही है और क्या गलत है, और कभी भी किसी को तथ्य का लाभ नहीं उठाने दें कि आप उस पर भरोसा करें और उसकी बात तुरंत मान लें। अपने लिए सोचें, स्वतंत्र रूप से सोचें, हर चीज पर पुनर्विचार करें। दुनिया वास्तविकता को समझने के लिए प्रौद्योगिकी में लगातार आगे बढ़ रही है, इसलिए खुद को नवीनीकृत दुनिया के अनुरूप ढालना अनिवार्य है। पुनर्विचार का विचार मूल रूप से हमारी मौजूदा मान्यताओं, मानदंडों को चुनौती देने के इर्द गिर्द घूमता है। और सिद्धांत, ये हमारी धारणाओं और दृष्टिकोणों का आलोचनात्मक मूल्यांकन करने का एक बौद्धिक अभ्यास है, जो अक्सर समय के साथ हमारे अंदर गहराई से समाहित हो जाते हैं और उन्हें नई अंतर्दृष्टि, साक्ष्य या दृष्टिकोण के आधार पर नया आकार देते हैं। हमारे प्रारंभिक वर्षों और पालन पोषण में हम अपने पर्यावरण से एक निश्चित विश्व दृष्टिकोण प्राप्त करते हैं, जिसमें सामान्य रूप से हमारे परिवार, स्कूल, हमारे समुदाय और संस्कृति शामिल हैं। उदाहरण के लिए, कुछ लोग यह मानते हुए बड़े हो सकते हैं कि सफलता रैखिक होती है और आमतौर पर पदोन्नति, धन या मान्यता से परिभाषित होती है। हालांकि, पुनर्विचार दृष्टिकोण के साथ कोई भी सफलता के इस पारंपरिक दृष्टिकोण पर सवाल उठा सकता है और शायद यह महसूस कर सकता है कि सफलता को व्यक्तिगत रूप से बेहतर ढंग से परिभाषित किया जा सकता है, जैसे कि संतोषजनक काम ढूंढना, स्वस्थ रिश्ते बनाए रखना या समाज में सकारात्मक योगदान देना। पुनर्विचार के लाभ हैं अनेक। यह व्यक्तिगत विकास और अनुकूलनशीलता को सुविधाजनक बनाता है, जिसे हमें तेजी से विकसित हो रही दुनिया में नेविगेट करने में मदद मिलती है। अपनी मान्यताओं पर सवाल उठाने से हम विभिन्न दृष्टिकोणों और विचारों के प्रति अधिक खुले हो जाते हैं, जिससे हमारे रिश्तों में सहानुभूति और समझ पैदा होती है। व्यावसायिक रूप से पुनर्विचार नवाचार और समस्या समाधान को बढ़ावा देता है और हमें काम करने के नए और बेहतर तरीके खोजने के लिए प्रेरित करता है। पुनर्विचार करने की क्षमता हमें संज्ञानात्मक पूर्वाग्रहों के नुकसान से भी बचाती है। संज्ञानात्मक पूर्वाग्रह वास्तविकता की हमारी धारणा को विकृत कर सकते हैं, हमारे निर्णय और निर्णय लेने की क्षमता को धूमिल कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, पुष्टिकरण पूर्वाग्रह हमें ऐसी जानकारी को प्राथमिकता देने के लिए प्रेरित करता है जो विरोधाभासी साक्ष्यों को नजरअंदाज करते हुए हमारी मौजूदा मान्यताओं की पुष्टि करती है। यदि हम मानते हैं कि हमारा गृहनगर रहने के लिए सबसे अच्छी जगह है, तो हमें इसकी कमियों को खारिज करते हुए इसके सकारात्मक पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। पुनर्विचार हमें ऐसे पूर्वाग्रहों की गंभीर रूप से जांच करने और अधिक संतुलित और सूचित दृष्टिकोण अपनाने के लिए प्रोत्साहित करता है। केवल इसे लें, आप कुछ भी नहीं छीनेंगे, कम से कम इस कानून को लें जो स्वतंत्र विचार का सार है। हम पैटर्न और कानूनों में बड़े हुए हैं, हम अपने माता पिता द्वारा और अन्य लोग उस वातावरण से आए हैं जिसमें हम रहते थे, बिना ये सोचे कि वे सच हैं या नहीं, अपनी हर राय या धारणा की दोबारा जांच करें। द लॉ ऑफ द हॉक, लॉ 5, जो मैंने देखा लाभ के लिए एक उत्कृष्ट शुरुआत है, ये किसी भी स्वतंत्र विचार में सबसे महत्वपूर्ण कानून है। जिन खूबसूरत चीजों से मैंने लाभ कमाया है, उनमें से अधिकांश मैंने बस उन्हें देखा है। 1998 में मैंने अपने कंप्यूटर पर एक ऑनलाइन कैसीनो टुडे 888 का विज्ञापन देखा और मुझे तुरंत दिलचस्पी हुई कि एक कैसीनो इंटरनेट पर कैसे सेवाएं प्रदान करता है। आप जो देखते हैं उस पर विश्वास करें और लाभ के लिए इसका उपयोग करें। हमने जो देखा, सुना या महसूस किया, वो हमसे छीना नहीं जा सकता। जहां तक आपका संबंध है, अवलोकन के आधार पर आप जो कुछ भी देखते, सुनते, महसूस करते, सूंघते हैं, वो सत्य है। यह आपकी दुनिया है और यह आपकी है, आपको सोचने की आज़ादी है। मैंने एक तरीका देखा। मैंने हाल ही में अपने परिवार के साथ सिलिकॉन वैली में एक साल बिताया ताकि बच्चे अंग्रेजी और अमेरिकी संस्कृति सीख सकें। जब मैं 10 से 12 साल का था, तो मेरे माता पिता भी हमारे साथ 2 साल के लिए सिलिकॉन वैली में थे। इससे मुझे व्यापार में जबरदस्त फायदा हुआ और मैं चाहता था कि मेरे बच्चों को भी यह फायदा मिले। इस बार एक वयस्क के रूप में मैंने व्यवसाय के प्रति अमेरिकी गंभीरता, आकार, संस्कृति, शिष्टाचार, आप्रवासन का लाभ देखा और सरकार पूंजी के संरक्षण का समर्थन करती है, और तब मुझे पहली बार समझ में आया कि अमेरिकी कंपनियों के शेयरों को कंपनियों की तुलना में प्रीमियम क्यों मिलता है दुनिया के बाकी। मैं हमेशा सोचता था कि अमेरिकी कंपनियों की कीमतें बहुत ऊंची थीं। इस बार जब मैंने हॉक लॉ को सक्रिय किया और वास्तव में संयुक्त राज्य अमेरिका को करीब से देखा, तो मैंने मामले को समझ लिया। दरअसल, जब आप शेयर बाजारों के रिटर्न को देखते हैं, तो संयुक्त राज्य अमेरिका दुनिया में पहले स्थान पर है। और मैं इससे लाभ कैसे कमा सकता हूँ? बेशक, जब मैं संयुक्त राज्य अमेरिका की कंपनियों का मूल्य निर्धारण करता हूँ, तो मैं उन्हें प्रीमियम देता हूँ, और सही मूल्य निर्धारण शेयर बाजार में लाभ का आधार है। आप यहां पढ़ सकते हैं कि आप तोते के साथ संयुक्त रूप से इसराइल में अमेरिकी पद्धति से कैसे लाभ कमा सकते हैं। कानून देखें या महसूस करें। उदाहरण के लिए, आप देखते हैं कि इथियोपियाई अधिक वजन वाले नहीं हैं और टैफ पर रहते हैं, और अमेरिकी अत्यधिक अधिक वजन वाले हैं और गेहूं पर रहते हैं। यहां किसी शोध की आवश्यकता नहीं है, कोई भी अधिक क्रॉस के साथ सीधे निष्कर्ष निकाल सकता है कि टैफ की तुलना में गेहूं के बारे में कुछ बहुत बुरा है। कई बार मुझे प्रतिक्रियाएं मिलती हैं, लेकिन कोई शोध नहीं है। ये भी सच है कि थॉमस एडिसन ने शोध नहीं किया था कि बिजली का आविष्कार करना चाहिए। डार्विन ने इसी कानून से बनाया करियर। 1930 के दशक में चार्ल्स डार्विन ने एक प्रकृतिवादी के रूप में HMS बीगल पर यात्रा की। उनकी यात्रा उन्हें अद्वितीय गैलापागोस द्वीप समूह सहित कई विविध वातावरणों में ले गई। वहां उन्होंने कछुए और फिंच जैसी संबंधित लेकिन विशिष्ट प्रजातियों को देखा, जिनमें से प्रत्येक अपने विशेष द्वीप के लिए अनुकूलित थी। विविधताओं से प्रभावित होकर उन्होंने घर पर विभिन्न प्रजातियों और उनके वातावरण के बारे में और अधिक सीखा। इन अवलोकनों ने उन्हें प्राकृतिक चयन के सिद्धांत को प्रस्तावित करने के लिए प्रेरित किया, जो प्रस्तावित करता है कि प्रजातियां जीवित रहने के लिए फायदेमंद अनुकूलन के माध्यम से पीढ़ी दर पीढ़ी विकसित होती हैं। इस प्रकार डार्विन के गहन अवलोकन कौशल ने विकास की उनकी समझ को आकार देने में केंद्रीय भूमिका निभाई। डार्विन अब तक के सबसे महान स्वतंत्र विचारकों में से एक थे। खुद पर भरोसा रखें, भले ही आप पागल हों, हमेशा जब आप बाज की तरह तलाश में हों तो खुद पर भरोसा रखें। स्वतंत्र विचार में ये सबसे महत्वपूर्ण कानून है। यह आपकी इंद्रियां ही हैं जो आपको अगले शिकार के लिए सुराग लाएंगी। दृष्टि की भावना सबसे महत्वपूर्ण है, न केवल हमारे मस्तिष्क का एक बड़ा हिस्सा हम जो देखते हैं उसे समझने में व्यस्त है। अवलोकन की सुंदरता यह है कि यह कई बार आपके लिए अद्वितीय होता है। आप अपनी आंखों से क्या देखते हैं, यहीं से समाधान शुरू होता है। क्या आपके पास प्रश्न या समस्या का व्यक्तिगत अनुभव है? यदि आप पागल नहीं हैं तो यह माना जा सकता है कि यह आपके लिए सबसे सुरक्षित चीज है। जो आप देखते हैं, सुनते हैं, उसका उपयोग करें। ध्यान बाज का एक गुण है। बाज का जो गुण लेने की सलाह दी जाती है वह है उसका ध्यान केंद्रित करना। उनका ध्यान कई जगहों पर न जाकर एक ही जगह पर केंद्रित होता है। मानव मस्तिष्क का निर्माण इस तरह किया गया है कि वह एक निश्चित समय में एक चीज पर ध्यान केंद्रित कर सके, और जब हम एक चीज से दूसरी चीज पर कूदते हैं तो हमें वापस आने में समय लगता है। आधुनिक दुनिया हजारों विकर्षणों और प्रलोभनों से भरी है, लेकिन बड़े विजेता वे हैं जो ध्यान केंद्रित करना जानते हैं, और यह उस प्रकृति के व्यक्ति के लिए अधिक उपयुक्त है जहां से हम आए हैं। वहां हजारों विकर्षण और पाठ संदेश और वीडियो नहीं थे। हमारा ध्यान आमतौर पर एक जगह एक ही चीज पर होता है। इसका हमारे अच्छे जीवन दिमाग पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। जब हम ध्यान देते हैं और वर्तमान में व्यस्त होते हैं तो हमें पुरस्कृत किया जाता है, और ध्यान वास्तव में एक प्रकार का प्यार है। सब कुछ देखना बाज कानून के नजरिए से न केवल खुद को देखना और उस पर विश्वास करना है, बल्कि ऊपर से एक दृश्य हमें वास्तविकता को और अधिक सही ढंग से देखने में मदद करता है, न कि केवल हमारे दृष्टिकोण से। मैं इसे पहले से ही स्वाभाविक रूप से करता हूं, लेकिन मुझे इसका अभ्यास करना होगा। मेरा एक दोस्त के साथ वर्षों तक झगड़ा हुआ था। उसने मेरे साथ काम किया और अंत में उसे कंपनी से निकाल दिया गया, और मैंने गोलीबारी में उसका बचाव नहीं किया। उन्होंने कई सालों तक मुझसे बात नहीं की। एक दिन मैंने उसके साथ लड़ाई के बारे में सोचा और मैं ऊपर चला गया, और मैंने हम दोनों को ऊपर से देखा जैसा कि यह था, और मैंने देखा कि मैंने अपना व्यवहार उसकी रक्षा करने से सुरक्षा की कमी में बदल दिया था। मैंने उसी दूसरे क्षण वापटुता में नियम 24 पर उसे फोन उठाया और माफी मांगी। हम आज फिर से दोस्त हैं। व्यक्तिगत स्तर पर यह एक वास्तविक उदाहरण है, लेकिन इसे देखते हुए यह आपके द्वारा किए जाने वाले हर काम के लिए महत्वपूर्ण है। हमारे पास अपने दिमाग में हर चीज की कल्पना करने की क्षमता है, और जैसे कि ऊपर से इसे व्यवसाय में और जिन चीजों की आप योजना बना रहे हैं दोनों में आजमाएं, ताकि आपके दिमाग में चीजों का एक सिंहावलोकन हो और इस तरह से समझें और दिलचस्प अंतर्दृष्टि प्राप्त करें। आखिर क्यों? जब कोई कुछ कहता है तो ये समझने की कोशिश करें कि वह इसे किस इच्छा से कहता है, कहां कहता है, इसके बारे में सुना है, और क्या उसे ये कहने के लिए प्रेरित करता है। संक्षेप में, हमेशा एक कारण की तलाश करें और ऊपर से चीजों को देखने के लिए एक स्तर उठाएं। किसी बातचीत या बहस में तर्क की वास्तविक जड़ तक पहुंचना महत्वपूर्ण है। दूसरा पहलू, हमने लगातार चीजों के कारण की जांच करने का अभ्यास किया। ज्यादातर चीजें जो घटित होती हैं उनका कोई ना कोई कारण होता है। तो जब आप पूछेंगे क्यों, चीजों का कारण समझने का अभ्यास करें। हर चीज का कोई कारण नहीं होता है, इसलिए आपको सावधान रहना चाहिए। कभी कभी परिणाम यादृच्छिक या अघुलनशील होता है, और कभी कभी आपको वहीं नहीं रुकना चाहिए बल्कि आगे बढ़ते रहना चाहिए। लेकिन याद रखें कि कुछ चीजें हैं जिनके लिए हम कारण ढूंढते हैं, कुछ हम नहीं करते हैं ती, और कुछ हम इसे तब पाते हैं जब हम पहले ही भूल चुके होते हैं कि हम देख भी रहे थे। पहाड़ पर हर उस स्थान पर एक फायदा मिलता है जहां हम कुछ फायदे की तलाश करते हैं। जब आप उच्च स्तर पर कैलकुलस सीखते हैं तो आपको वो लाभ मिलता है जो मैंने दूसरों के मुकाबले सोचा था। जीवन में कई रिश्ते, कड़ी मेहनत न करने के लिए हमारी स्थिति महत्वपूर्ण है। युद्ध में नियंत्रित क्षेत्रों में स्थिति महत्वपूर्ण है, वैसे ही जीवन भी है। इसे इस तरह से सोचें, पहाड़ से पत्थर फेंकना बहुत आसान है, आप बेहतर देख सकते हैं, और पत्थर के लिए दूर तक उड़ना आसान है। अपने आप को पहाड़ पर रखें। एक औसत गायक 1000 NIS कमाता है, एक औसत सॉफ्टवेयर डेवलपर 30,000 NIS कमाता है। मासिक वेतन के मामले में अच्छा पद पाने के लिए पहाड़ पर खड़े होकर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सीखना उचित है। ये सिर्फ स्थान का एक उदाहरण है। रिश्ते में बसने और कमाने के बाद हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि दोस्तों, माता पिता, बच्चों, जीवनसाथी के साथ रिश्तों से सभी मामलों में बहुत बड़ा लाभ है, शायद सबसे बड़ा। रिश्तेदार, सहकर्मी और शैतान जानता है कि किसके साथ यह खोजना महत्वपूर्ण है कि उन्हें संरक्षित करने और विकसित करने का सबसे सरल तरीका क्या है। जब आप स्वतंत्र विचार के माध्यम से किसी समाधान के बारे में सोचते हैं, जिसका अर्थ है सबसे बड़े लाभ के लिए मेरे लिए सबसे कम प्रयास, तो आप इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि आपको उनके करीब होने की आवश्यकता है। सहकर्मियों के लिए यह आसान है क्योंकि आप उन्हें हमेशा कार्यालय में देखते हैं, इसलिए कार्यालय में रहना महत्वपूर्ण है। दोस्त भी वास्तव में इसे आसान बनाते हैं, और वास्तव में आप देखते हैं कि दोस्त सबसे अच्छे होते हैं, और बच्चों को सबसे अधिक मजा तब आता है जब वे अपने दोस्तों के पास रहते हैं। अमेरिका में, जिसकी मैं इतनी प्रशंसा करता हूँ, उन्होंने इसे नहीं समझा, और वास्तव में मित्रता इजरायलियों की तुलना में बहुत अधिक उथली लगती है जो एक दूसरे के बगल में रहते हैं और परिवहन की कोई आवश्यकता नहीं है। माता पिता और बच्चों के बारे में, यहाँ तक कि माता पिता भी, जो लाभ प्राप्त करना चाहते हैं जब बच्चे बड़े हो जाएं, तो उनसे खुशी पाने का सबसे अच्छा तरीका है कि उनके ठीक बगल में रहें। वे इसी तरह रहते थे, कार ने हमारी मदद नहीं की, इसने बस सभी को हर किसी से दूर रखा। लान लॉ के अनुसार हमारे दोस्त और हम दोनों सिर्फ आराम करना चाहते हैं और कड़ी मेहनत नहीं करना चाहते हैं, इसलिए एक अच्छे जीवन के लिए वास्तव में एक दूसरे के करीब रहने का महत्व महत्वपूर्ण है। कभी कभी 5 मिनट की ड्राइव भी बहुत ज्यादा होती है। जब एक भालू हमारे पीछे दौड़ रहा हो, जब एक भालू आपके और आपके दोस्त के पीछे दौड़ रहा हो, तो आपको बस दोस्त से तेज दौड़ना होगा। आपको भालू से तेज दौड़ने की जरूरत नहीं है, आपकी स्थिति ही मायने रखती है। कानून मूल रूप से कहता है, हमेशा इस बारे में सोचें कि जीतने की सबसे अच्छी संभावना के अनुसार कहां खड़ा होना है। शतरंज की बिसात, जो कि आपका जीवन है, को इस तरह रखें कि आपके पास जीतने का अच्छा मौका हो। जीवन में आपकी स्थिति सौभाग्य का लाभ उठाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज है जो कभी कभी आती है। केवल गहन और स्मार्ट काम से ही आप भाग्यशाली बन सकते हैं। जो मेरे लिए उपयुक्त है उसमें प्रयास करना। ओपिला को ये चुनने में प्रयास करने की आवश्यकता है कि समय कहाँ निवेश करना है, और ये स्थान का बड़ा रहस्य है। मैं अपने स्वभाव से अधीर हूँ और चाहता हूँ कि अब सब कुछ हो जाए। इसका मतलब यह है कि निवेश और पोकर में इस किरदार की मेरी कमजोरी है, क्योंकि इन दोनों के लिए बहुत धैर्य की आवश्यकता होती है। मैं इस बात से वाकिफ हूँ और इसलिए दोनों को सिर्फ मनोरंजन के लिए करता हूँ, पेशे के तौर पर नहीं। दूसरी ओर, अधीरता उन व्यवसायों के लिए वास्तव में अच्छी है जो चीजें बनाते हैं, क्योंकि यह मुझे अपनी अधीरता से हर किसी को धक्का देती है। उन चीजों में संलग्न रहें जो आपके चरित्र के अनुरूप हों, जो आपको लाभ देती हैं। उदाहरण के लिए, किसी पेशे को चुनने में खुद को स्थापित करना एक सांख्यिकीय जीवन बहुत महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए, यदि वित्त पेशे 1 महीने में औसतन 20,000 NIS लाते हैं और डिजाइन पेशे प्रति माह 4,000 NIS लाते हैं, जब आप वित्त पेशे में अध्ययन या काम करना चुनते हैं, तो आप पहले से ही 20,000 शेकेल से अधिक के अच्छे शुरुआती बिंदु पर होते हैं। यदि कंपनी शुरू करने वाला कोई व्यक्ति औसतन प्रति माह NIS 1 मिलियन कमाता है, तो यह और भी बेहतर है। जीवन में हर चीज पर एक कानून लागू होता है। यहाँ ये पैसे का उदाहरण है, लेकिन इसे स्वास्थ्य, साथी चुनने या खेल पर भी लागू किया जा सकता है। और इस सवाल पर कि पैसे कमाने की संभावनाओं को अधिकतम कैसे किया जाए, एक ऐसी योजना बनाएं जिसमें यथासंभव अच्छे प्रतिशत शामिल हों। यहां तक कि भोजन में भी आप पोषण में बैठ सकते हैं। एक अच्छे सांख्यिकीय आधार का अर्थ है भोजन पर दांव के दाईं ओर होना। मुफ्त पोषण में इसके बारे में पढ़ें। एक बच्चा जो मनुष्यों के लिए उपयुक्त भोजन खाता है, उसे दूसरों की तुलना में लाभ होता है। उसके लिए सोचना आसान हो जाएगा, खेल खेलना आसान हो जाएगा, और संक्षेप में उसे दूसरों पर लाभ और अच्छी स्थिति प्राप्त होगी। शेर का नियम, नियम 6, थकना एक छोटा सा प्रयास है। शेर आराम करना चाहता है, वास्तव में हल्का काम करना चाहता है और छाया में आराम से लेटना चाहता है। हम इंसान ऐसे ही हैं, न्यूनतम प्रयास और सुविधा से प्रेरित। प्रयास करने के अर्थ में सोचना बंद करने के लिए, इसलिए मैं सबसे बड़े लाभ के लिए सबसे छोटे प्रयास की अवधारणा में सोचने में कामयाब रहा। ऐसा कोई नहीं है जो छाया में नहीं रहना चाहता, और हर कोई उसके लिए काम नहीं करना चाहता। एक है जो इसे स्वीकार नहीं करेगा। हाँ, लोग मजेदार आलस्य में आसान काम करना चाहते हैं, और यदि आप सुंदरता के लिए अपनी नाक टेढ़ी करते हैं, तो ठीक है, टेढ़ी नाक है। हमारी सोच भी हमारी तरह आलसी है। हमारी सोच अधिकतम लाभ के लिए न्यूनतम प्रयास चाहती है। समस्या तब होती है जब वो चाहती है कि आप उसे जाने दें। विचार हमारे जैसे लोग कड़ी मेहनत नहीं करना चाहते हैं, इसीलिए हमारे दिमाग में ढांचे हैं जो पूर्ण विचार हैं। हमें हर बार किसी चीज के पीछे के विचार के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, विचार ही उचित विचार या उचित उत्तर निकालता है। अफ्रीका के सवाना में ये बहुत अच्छा था, क्योंकि जब कोई जेब्रा हम पर हमला करना चाहता है तो सोचने के लिए ज्यादा समय नहीं होता है, तुरंत कार्य योजना बनानी होगी। आधुनिक दुनिया में यह आलसी सोच हमें विभिन्न समस्याओं और मानसिक पूर्वाग्रहों में डाल देती है। उदाहरण के लिए, नए तथ्य होने पर भी हम दोबारा जांचे बिना ही उत्तर निकाल देते हैं। हम ईर्ष्यापूर्वक अपनी राय की रक्षा करते हैं, हमारी सोच हमारी तरह ही आलसी है। बड़ा लाभ यह है कि अगली बार जब आप कोई उत्तर या राय निकालें तो उस पर पुनर्विचार करने का प्रयास करें और अपने दिमाग से चिल्लाएं, इतना आलसी होना बंद करें। आपको यह महसूस करने से लाभ होगा कि हर कोई शेर की तरह काम करता है, केवल आप ही नहीं। मैंने पाया कि मैं हमेशा घर पर प्लास्टिक की प्लेट पसंद करता था, और अब जब मैं इस खंड के बीच में था तो मुझे समझ आया कि ऐसा क्यों है। हल्की प्लास्टिक की प्लेट और मुझे भारी कांच की प्लेट की कोई इच्छा नहीं है, यहाँ कोई परिष्कार नहीं है, केवल कानून का सार है। अधिकतम आराम के साथ काम करना आसान है। ये हमेशा अधिकतम लाभ के लिए न्यूनतम प्रयास के संदर्भ में सोचता है। ये प्रयास का नियम, थोड़े प्रयास से बड़ा लाभ, पुस्तक के सूत्र से जुड़ा है, क्योंकि इसने मुझे इन सभी वर्षों में प्रेरित किया है, शायद दूसरों की तुलना में थोड़ा अधिक। अब इस कानून को लें और इससे आपको व्यवसाय में लाभ होगा, व्यक्तिगत स्तर पर भी और राज्य स्तर पर भी। मान लीजिए कि लोग कम प्रयास से आराम चाहते हैं। प्रयास के नियम को विधि के नियम की आदतों के साथ जोड़ दें और आपको एक न्यूट्रॉन बम मिल जाएगा। उदाहरण के लिए, मैं हमेशा अपने डेस्क के बगल में एक किताब रखता हूं ताकि मेरे लिए पढ़ना शुरू करना आसान हो जाए। टेस्ला और गूगल के साथ मैं कम प्रयास करता हूं, चैनलों के माध्यम से गड़बड़ किए बिना। इस तरह के विभिन्न व्यवसायों से गुजरें और आप देखेंगे कि वे हमें केवल आराम देते हैं और उनसे पहले वाले व्यवसाय की तुलना में कम मेहनत करते हैं। ये पुस्तक आपको आरामदायक भी बनाएगी, आप मेरे प्रयासों को बचाएंगे और नियम तैयार करेंगे, यह आराम है। गूगल हमें जानकारी खोजने और उस तक पहुंचने में न्यूनतम प्रयास की अनुमति देता है। इस विधि ने दुनिया को जीत लिया है, क्योंकि यह आश्चर्यजनक रूप से सुविधाजनक है। मैं वो सब कुछ ले लेता हूं जो उस स्थान के करीब है जहां आप चाहते हैं कि बच्चे सेब खाएं, बस इसे वहीं रख दें जहां वे ज्यादातर समय रहते हैं। आप कोई किताब पढ़ना चाहते हैं, उसे अपने बिस्तर के बगल में या जहां भी आप बैठें रख दें। आदत को बिना प्रयास के शुरू करें। मनुष्य सभी प्राणियों की तरह आमतौर पर दक्षता की तलाश करने और अनावश्यक प्रयास से बचने के लिए प्रतिबद्ध है। इसे कभी कभी कम से कम प्रयास का नियम कहा जाता है। ये प्रवृत्ति संभवतः एक अस्तित्व तंत्र के रूप में विकसित हुई, ऐसे वातावरण में जहां संसाधन जैसे भोजन दुर्लभ थे। हमारे पूर्वजों के लिए बेहतर होता यदि वे यथासंभव कम ऊर्जा खर्च करते हुए अपनी जरूरतों को पूरा कर पाते। इस तरह वे गर्म रहने और चोटों से ठीक होने जैसे महत्वपूर्ण कार्यों के लिए ऊर्जा बचा सकते हैं। आधुनिक दुनिया चाहती है कि हम ऐसे समाधानों को प्राथमिकता दें जो हमारे जीवन को आसान या अधिक कुशल बनाते हैं। हम प्रौद्योगिकियों सेवाओं और उत्पादों की सराहना करते हैं जो हमारा समय और प्रयास बचाते हैं, क्योंकि वे हमें अन्य चीजों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए स्वतंत्र करते हैं जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है, जैसे कि प्रियजनों के साथ समय बिताना या शौक में शामिल होना। शेर मुख्य रूप से खुद पर निर्भर रहता है, उसका शिकार इंसान के अलावा कोई नहीं कर सकता। वह अपने कार्यों में अपने भाग्य के लिए जिम्मेदार है, तो हम भी अपने प्रति जिम्मेदार हैं। बेशक इसमें संतुलन होना चाहिए, क्योंकि दूसरों पर निर्भर रहना अच्छा है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीजों में आपको खुद पर निर्भर रहना चाहिए और दूसरे लोगों की दया पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। आपको वहां पहुंचने के लिए काम करना होगा। तोता कानून नियम 7, यह सिर्फ नकल करना नहीं है, सुधार करना बेहतर है। सफल लोगों से बचे हुए लोगों से सुंदर की नकल करने में एक छोटा सा प्रयास और एक बड़ा लाभ है। मौजूदा सफल विचारों और चीजों की नकल करना और उनमें सुधार करना ज्यादातर मामलों में पुनः आविष्कार करने से बेहतर है। पहिया सोचिए, मान लीजिए कि आप एक घर बनाना चाहते हैं। बेशक सबसे समझदारी वाली बात यह है कि आप अपने पसंदीदा घरों में जाएं और अच्छे तत्वों की नकल करें। गोंद की तरह सफल लोगों से जुड़े रहें और ठीक से अध्ययन करें कि क्या चीज उन्हें सफल बनाती है। +500 में मैंने यही किया और जिन भी कंपनियों में मैं शामिल था उनमें सच्चाई ये है। तोते को दूसरों की प्रतीक्षा करने के लिए जाना जाता है। हमें भी लाभ होगा, लेकिन हम किसी मूर्ख की नकल नहीं करेंगे, बल्कि हम सुधार करेंगे और केवल सफल लोगों को ही काटेंगे। जब आप कुछ लेते हैं और उसमें सुधार करते हैं तो वो उसी क्षण से आपका हो जाता है, लाभ आपके पास आता है। सोचिए, मान लीजिए कि आपने जूते बेचने के लिए सबसे सफल कंपनी से नकल की है। वे जूते कैसे पेश करते हैं, यह आपके वर्षों के अनुभव को बचा सकता है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या नकल नहीं करना है। तोता कानून का एक महत्वपूर्ण हिस्सा यह है कि क्या नहीं करना है। प्रतिलिपि शायद नकल करने के लिए हाँ से भी अधिक महत्वपूर्ण और कभी कभी असफल की जांच करना महत्वपूर्ण होता है। उदाहरण के लिए, यदि आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिलते हैं जो दिवालिया है, तो पता लगाएं कि वह इस स्थिति में क्यों पहुंचा। ज्यादातर समय मैंने सुना है कि यह किसी साथी के कारण होता है या बस कुछ ऐसा जिसकी उन्हें अपेक्षा नहीं थी या अहंकार। मुझे हमेशा असफल चीजों में और सफल चीजों में बहुत दिलचस्पी रहती है, उनमें क्या सफल नहीं है। संक्षेप में, तोता कानून दोहरा है क्योंकि असफल की नकल न करने में एक पागलपन भरा लाभ है, ये बहुत सारा काम बचाता है। संभाव्य दृष्टिकोण से ये काम करता है और यह कानूनी है। संभाव्य दृष्टिकोण से ये कुछ नया आविष्कार करने से कहीं अधिक स्मार्ट है। ठीक इसी तरह हमने 500 का निर्माण किया। हमने लंदन में एक कंपनी में एक अच्छा बिजनेस मॉडल देखा जो इसी तरह बनाया गया था और सुधार हुआ। जीवन के सभी क्षेत्रों से यह एक महत्वपूर्ण उपकरण है। जब आप किसी को सफल देखते हैं तो ये समझने लायक है कि उन्होंने ये कैसे किया। जब आप एक सफल सेवा देखते हैं तो उसे एक नई कंपनी के लिए कॉपी करने और सुधारने के लायक है। जैसे जैसे आप अभ्यास करते हैं और सुधार करते हैं, सफलता की संभावनाएं बढ़ती जाती हैं। विकास एक संभाव्य दृष्टिकोण से प्रतिलिपि बनाता है और सुधारता है। ये बिल्कुल सही समझ में आता है और जब आप इसके बारे में इस तरह सोचते हैं कि विकास ने मनुष्य को राख से बनाया है। प्रस्तुतियों की नकल की जाती है, नकल की गई और बेहतर बनाई गई कृतियां जीवित रहती हैं और बाकी गायब हो जाती हैं। प्रकृति ऐसे ही काम करती है। मान लीजिए कि कोई ऐसा गुण है जो मृत्यु का कारण बनता है, तो यह आमतौर पर अगली पीढ़ी तक नहीं पहुंचता है। सर्पिल कानून, कानून 8, पहली बार में ही वह उत्पाद, सेवा या व्यक्तिगत क्षमता प्राप्त करना संभव नहीं है जो आप चाहते हैं। यह उस तरह से काम नहीं करता। सर्पिल नियम में हम विकास, धीमे और निरंतर परिवर्तनों का अनुकरण करते हैं। प्रयास करें, प्रतिक्रिया प्राप्त करें, सुधार करें, पुनः प्रयास करें इत्यादि। हमारा मस्तिष्क अपनी प्रक्रियाओं में बिल्कुल उसी तरह काम करता है। इसी तरह हम एक उदाहरण का पालन करना सीखते हैं। ये कानून इतना महत्वपूर्ण है कि मैं केवल अगले पैराग्राफ में आपके लिए नाम के बारे में जानने जा रहा हूँ। नाम जो कानून को पुनरावृत रूप से समझाते हैं, ये सुधार या प्रगति प्राप्त करने के इरादे से बार बार कुछ करने का प्रतीक है। चक्रीय प्रगति में यह एक सतत प्रक्रिया का सुझाव देता है जिसमें प्रत्येक चक्र पिछले एक पर निर्माण करता है, एक सर्पिल के विस्तारित सकल के समान। संचयी, यह वाक्यांश बताता है कि प्रत्येक चक्र या मोड़ धीरे धीरे पहले जो हासिल किया गया था उसे जोड़ता है। यह इंगित करता है कि प्रक्रिया का प्रत्येक सकल या चक्र पिछले से अधिक या अधिक उन्नत है, एक सर्पिल में बढ़ते सकल के समान। मेरे पास है, मैंने जो कुछ भी किया है उसमें हमेशा सर्पिल का उपयोग किया है, मैंने हमेशा इस महत्वपूर्ण उपकरण का उपयोग किया है। ये दो बड़े मुद्दों को हल करता है। एक तो यह आपको और टीम को प्रोजेक्ट में खींचता है क्योंकि इसमें कुछ ठोस है, और दूसरा ये फीडबैक बिल्डिंग का सबसे महत्वपूर्ण चक्र शुरू करता है, जो वह प्रक्रिया है जो विकास का अनुकरण करती है। गूगल ने भी कोड की एक छोटी लाइन के साथ शुरुआत की थी। कार्य को किसी ऐसी छोटी चीज से शुरू करें जिससे आप पहले से ही प्रभावित हो सकते हैं। ऐसे में यदि उसमें कुछ अच्छा है तो आपके लिए उससे अलग होना मुश्किल होगा। हमेशा बड़े या छोटे कार्यों को पूरा करें, सर्पिल का कम से कम एक चक्कर। अपने लिए कोई कार्य निर्धारित करना और उसे आंशिक रूप से करना अपने आप से झूठ बोलने जैसा है। छोटे छोटे कार्य महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि उनसे हमें पूरा करने और समापन का आनंद लेने की आदत होती है। जो कार्य आपको प्राप्त हुए और कहा गया कि आप करेंगे, उन्हें करें। न तो दूसरों से झूठ बोलें और न ही खुद से, क्योंकि इसका आपके जीवन पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। आप इसका अभ्यास दैनिक कार्यों में कर सकते हैं जिन्हें आप अपने लिए लिखते हैं। बस ये सुनिश्चित करें कि वे सभी पूरे हो गए हैं। ध्यान दें कि हारने वाले आमतौर पर आपको बहाने के साथ जवाब देंगे, मुझ पर एक एहसान करो, आप विजेता होंगे, हारे हुए नहीं। पहला कदम उठाना संपर्क के लिए रोइंग के सर्पिल में या सर्पिल कानून में पहला कदम महत्वपूर्ण है। हमारे लिए किसी चीज को शुरू करने से ज्यादा उसे रोकना कठिन होता है, इसलिए किसी चीज को शुरू करने में बड़ा फायदा होता है, भले ही वो एक छोटा कदम ही क्यों न हो। अर्थात हमारे किसी भी लक्ष्य में एक प्रारंभिक कार्रवाई द्वारा ये समझना शुरू करना कि हमारे सामने क्या है जो हमें अधिक जानकारी देगा या हम जिस तरह से समझेंगे, और कभी कभी और आमतौर पर हार मानने का निर्णय लेते हैं। मान लीजिए कि आप जानना चाहते हैं कि क्या मनोविज्ञान आपके लिए एक पेशे के रूप में उपयुक्त हो सकता है, तो मैं तुरंत एक प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक द्वारा लिखित पुस्तक पढ़कर पहला कदम उठाऊंगा या संपर्क के लिए प्रयास करूंगा। इससे मुझे इस विषय पर अधिक समझ मिलेगी और यदि यह मेरे अनुकूल होगा तो यह एहसास भी होगा। IDF परिभाषा के अनुसार संपर्क के लिए प्रयास तब किया जाता है जब कोई बल जो युद्ध के लिए तैयार होता है घात लगाकर या चलते हुए एक का पता लगाता है दुश्मन सीमा को सीमित करता है और उस पर हमला करता है। कुल मिलाकर मैं ऐसी स्थिति में हूं जहां मैं दुश्मन को देख या सुन सकता हूं और फिर मुझे उसकी देखभाल करनी है। इजरायली सेना में इसके खिलाफ युद्ध में इसका बहुत महत्व है। आतंकवादी और आतंकवादी, मैं समझ सकता हूं कि यह कहां से आता है। यह अक्सर एक फायदा देता है जब आपका दुश्मन सोचता है कि आप उस पर हमला करने जा रहे हैं, वो भागने की स्थिति में आ जाता है। ये समझ लें कि इजरायली सैनिक आखिरी क्षण तक दृढ़ है। द फर्स्ट सटेप द्वारा अंक, मैंने द फर्स्ट सटेप द्वारा 500 के अंक का प्रचार किया। मैंने एक प्रतिभाशाली लेकिन अनुभवहीन अकाउंटेंट को रीच फॉर टच के लिए लंदन में दरवाजे खटखटाने के लिए भेजा। सच तो यह है कि पहले और दूसरे बैंकों ने हमें खारिज कर दिया, लेकिन उनके जरिए हम दूसरे बैंकों तक पहुंच गए। अंत में हम सफल हुए क्योंकि अनुभवहीन होने के बावजूद हमने संपर्क पर जोर दिया। कोई भी समस्या या कोई इच्छा संपर्क करने लायक है। इसका एक उदाहरण यह है कि कई बार इंजीनियर अपने सामने आने वाली समस्या के संपर्क में आने की कोशिश करने और इधर उधर भटकने की बजाय उसके समाधान में ही अपना मनोरंजन करते हैं। एक तर्क था कि वर्चुअल मनी को एक ट्रेडिंग ऐप बनाना उचित नहीं था। समस्या के आसपास जाने के बजाय हमने बस ये देखने के लिए दो समूह बनाए कि कंपनी को कहां अधिक लाभ है। जब कोई विकल्प नहीं है या जब कोई विकल्प होता है वर्चुअल मनी के लिए, हमें स्पष्ट उत्तर मिला कि वर्चुअल मनी के लिए विकल्प देने का एक वित्तीय लाभ भी है। हमने समस्या से संपर्क किया। चींटी का कानून, कानून 9। आप यहां जो पढ़ रहे हैं वह उसी तरह से एक विधि बनाने का मेरा प्रयास है जैसा मैंने किया था। एक ऐसी विधि जिसे यदि आप तोता नियम के साथ प्रयोग करेंगे तो शायद वो यहां खुश हो जाएगा। चींटी कोई चतुर प्राणी नहीं है, लेकिन एक विधि की सहायता से वो चतुर चीजें पैदा करती है। एक चींटी को अपने जीवन के विभिन्न पहलुओं के लिए एक उच्च संगठित और व्यवस्थित प्रणाली के लिए जाना जाता है। चींटियां एक विधि से अत्यधिक लाभ कमाती हैं और इसलिए मुझे आशा है कि आप भी ऐसा करेंगे। हर चीज को ऑर्डर करने और व्यवस्थित करने के लिए विधि की तलाश करें। कई बार सभी मामले अकेले ही हल हो जाते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका की सफलता इसी पर आधारित है। संयुक्त राज्य अमेरिका में व्यवस्था की शुरुआत सरकार से होती है, तीन प्राधिकरण एक अच्छे अलगाव के साथ। सोचने और योजना बनाने के लिए हमें व्यवस्था और संगठन की आवश्यकता होती है। आगे बढ़ने की योजना बनाना होमो सेपियंस का सार है। योजना बनाने के लिए हमें यह जानना होगा कि क्या व्यवस्था करनी है और क्या व्यवस्थित करना है। अपने आप को हर समय सरल बनाना और व्यवस्थित करना सिखाएं, अन्यथा ये जटिल और गड़बड़ हो जाएगा। सबसे पहले अपने आसपास और अपने घर में सौंदर्यपूर्ण व्यवस्था बनाएं और फिर अपने सभी कार्यों को व्यवस्थित करें। महान कार्यों को क्रम से बाहर करना अच्छा है। ऊर्जा के निवेश के बिना चीजें नहीं होंगी और गड़बड़ हो जाएंगी, और अगर हम उन्हें नहीं उतारेंगे तो वे मुसीबत में पड़ जाएंगे। एक तरीका जो मैंने घर पर चश्मा धोते समय किया था, मैं घर के व्यक्ति का नाम कांच पर लिख देता हूँ और इस तरह हर कोई केवल अपने गिलास के लिए जिम्मेदार होता है और उसे धोते हैं और वे गिलास से नहीं पीते। इससे पहले बच्चों को एक दिन में 30 कप मिलते थे, आज शून्य है। ये थोड़े प्रयास से बड़े लाभ, आप एक दिन में 30 गिलास नहीं धोते का एक उदाहरण है। मैंने एक बार चश्मे पर नाम लिखा था। टेक्नियन में अध्ययन करते समय मैंने एक विधि भी की थी। अध्ययन करते हैं टेस्ट से 3 स्कूल दिन पहले सुबह 7 बजे से दोपहर 4 बजे तक हमेशा पिछले टेस्ट को हल करना शुरू कर दें। यह एक ऐसा तरीका है जो काम करता है, इसलिए मुझे बहुत अधिक प्रश्न पूछने की जरूरत नहीं है। बेशक कभी कभी आपको अपवादों की आवश्यकता होती है। मैंने +500 कंपनी में भी वही तरीके लागू किए, लेकिन तब मैं पहले से ही एक कदम आगे था और हम ऐसे लोगों को लेकर आए जो तरीकों का निर्माण करेंगे। हमने ये सुनिश्चित किया कि हर चीज का एक तरीका हो। चीजों को ऑर्डर करना हमेशा होता है। ऊर्जा निवेश किए बिना जटिल बने, इसे सरल बनाने और व्यवस्थित करने में ऊर्जा निवेश करना उचित है। ये बिल्कुल भौतिकी में एंट्रापी की तरह है। आदेश बुद्धि को सही ढंग से काम करने में मदद करता है क्योंकि जानकारी आसानी से उपलब्ध होती है एक निजी व्यक्ति के रूप में, ताकि हमारे कार्य व्यवस्थित हों। और यदि आप एक व्यवसाय हैं तो ये हमेशा हमारे लिए संख्या और अन्य चीजों की व्यवस्था करने के लिए लोगों को नियुक्त करने के लिए भुगतान करता है। बी, व्यापारिक कंपनियों और सेनाओं के लिए भी यही सच है। आदेश शक्ति देता है। आदेश के उप उपकरणों में से एक आदत है, जो सबसे महत्वपूर्ण उपकरण है। आदतें चरित्र का निर्माण करती हैं और धीरे धीरे ये बदलती हैं कि आप कौन हैं। जब आप एक ही काम कई बार करते हैं तो यह एक विधि है। आदत एक तरीका है। छोटे कदमों में आगे बढ़ने के लिए निश्चित आदतें ही एकमात्र रास्ता है। सफल होने का एकमात्र तरीका छोटे कदमों में आगे बढ़ना है। इसलिए जैसा कि मनोचिकित्सकों के प्रश्न में है, सफल होने का एकमात्र तरीका नियमित आदतें हैं। यानी नियमित आदतें ही आपके जीवन में समृद्धि के सूचकांक को बेहतर बनाने का एकमात्र तरीका है, जिसे मैं सफलता कहता हूँ। आदत मूल रूप से किसी चीज को कई बार दोहराना है, और जब यह ऐसी चीज है जो आपको लाभ देती है तो यह वास्तव में अच्छी है। समस्या का इलाज करने का तरीका समस्या का इलाज करना है। समस्या का इलाज करना लक्षण का इलाज करने से हजार गुना अधिक महत्वपूर्ण है। यह व्यक्तिगत जीवन में भी होता है, जब आपका बच्चा अपनी थाली और व्यवसाय साफ नहीं करता है। अधिकांश समय हम लक्षण का इलाज करते हैं क्योंकि समस्या छिपी होती है। जब आप एक ही चीज को कई बार करते हैं तो यह एक विधि है। समस्या समस्या है, लक्षण नहीं। जेफ बेगोस, जिन्होंने लोगों के खरीदारी के तरीके को बदलने वाली कंपनी बनाई, ने यह शक्तिशाली वाक्य कहा, आप लक्षण को ठीक नहीं करते हैं, आप उस समस्या को ठीक करते हैं जो लक्षण पैदा करती है। और यही है पिछले 20 वर्षों में अमेज़न की सफलता का रहस्य। इस YouTube पर 12:33। बाद में वीडियो में 29:30 बेगोस बताते हैं कि खनिज प्राप्त करने के लिए अंतरिक्ष में यात्रा करना क्यों उचित है। इससे पता चलता है कि हर इंसान हर चीज में सही नहीं है और किसी को संदेह करना चाहिए। स्वतंत्र विचार करने से हमें एहसास होता है कि अन्य ग्रहों में खनिजों की तलाश करने की तुलना में अपने ग्रह की रक्षा करना बेहतर है। एक गलती जो एलोन मस्क भी स्पेसएक्स के दृष्टिकोण से करते हैं। अधिकांश समय हमें ये पता नहीं होता है कि हमारे कार्यों के पीछे एक विधि है। दीर्घकालिक समाधान के लिए सही तरीका खोजे, न कि अस्थायी समाधान। यह विधि बुद्धिमत्ता नहीं है, क्योंकि चींटी जीव काफी मूर्ख है, लेकिन सभी चींटियों को प्रबंधित करने की विधियों के कारण यह एक बहुत ही स्मार्ट तंत्र है। कई बार एक विधि को बुद्धिमत्ता समझ लिया जाता है। आइंस्टीन ने विचार प्रयोगों के माध्यम से सोचने का एक अनोखा तरीका खोजा। उनका तरीका किसी सामान्य बुद्धि से कम नहीं था, और निश्चित रूप से समाधानों में बहुत समय लगाना था। व्यवसायों और कंपनियों में आप देखते हैं कि कई साल पहले आविष्कार की गई एक विधि व्यवसाय को वर्षों तक समृद्ध बना सकती है। आप जो कुछ भी करते हैं उसमें आप ऐसा क्यों करते हैं, इसके पीछे एक विधि छिपी होती है। सवाल यह है कि क्या ये सही तरीका है। एक बेहतर तरीका अनुमान लगाना है, और भाग्य पर भरोसा करने के बजाय सही कार्रवाई की संभावना बढ़ाता है। घर में किसी गड़बड़ी का समाधान ढूंढते समय आपको इसे ठीक करने के लिए किसी की तलाश करने के बजाय ये समझना होगा कि यह पहले से ही गड़बड़ क्यों हो जाता है। विधियों के उदाहरण और जन्मजात प्रतिभा नहीं। जिस तरह से मैसी गेंद को ड्रिबल करते हैं, इसराइल में सरकार का तरीका, जिस तरह से आप किसी से मिलते हैं उसका स्वागत करते हैं, जिस तरह से आप मुद्दों के बारे में सोचते हैं, स्वतंत्र सोच का तरीका वास्तव में सोचने का एक तरीका है। खूबसूरती से गाना एक विधि है, जीन नहीं। सही विधि के प्रशिक्षण से कोई भी गा सकता है। दुनिया की सबसे महान विधि का एक उदाहरण, संयुक्त राज्य अमेरिका आज दुनिया का सबसे मजबूत साम्राज्य है। संयुक्त राज्य अमेरिका की महानता संयुक्त राज्य अमेरिका में जीवन जीने का तरीका है। संयुक्त राज्य अमेरिका में सरकार के तरीके ने पिछले कुछ वर्षों में संयुक्त राज्य अमेरिका को समृद्ध होने की अनुमति दी है। अमेरिका में सबसे चतुर या सबसे महान लोग नहीं है, लेकिन अमेरिका की प्रणाली लोगों को सही ढंग से और चतुराई से काम करने के लिए प्रेरित करती है, और इस प्रकार आम लोगों की भलाई होती है। अमेरिका में हर चीज एक ऐसी पद्धति के अनुसार विकसित की गई है जो खुद को बार बार दोहराती है, और इसका हिस्सा है उनकी महानता।